ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञान
कार्यक्रम में चौथा अध्याय, और ये चौथे अध्याय का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जिसका भाग चार होगा आज। कर्मणो यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो पिछले श्लोक से संबंध, जहां पर भगवान कर्म, विकर्म और अकर्म, ये कितना गहन विषय है और उसके साथ साथ ये कितना महत्वपूर्ण है जानना, इसलिए तीन दफा आज के श्लोक में बोद्धव्यम इस शब्द को भगवान ने उच्चारण किया है। तो चर्चा के हमारे विषय चल रहे हैं तीन प्रकार के कर्म, बोद्धव्यम, गहना और गति शब्द की व्याख्या। एक रिकैप पिछले सेटिंग से कि कर्म जो कि ये एक ऐसा अविभाज्य अंग है हम मनुष्यों के लिए, जिसके वजह से हम इस मनुष्य योनि में हैं, जिसके वजह से हम इस मनुष्य योनि से बाहर निकल सकते हैं, जिसके वजह से पूरे 84 लाख योनियां आत्मा जो है इन योनियों में भ्रमण करता फिरता है। तो हम मनुष्यों के लिए विशेष रूप से ये कर्म के नियम लागू हैं। हमारा जन्म प्रारंभ होता है जब हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए अपनी बुद्धि को लगाते हैं। तो यह है कर्म का सिद्धांत, जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे। जो भी कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो सब का लेखा जोखा लिखित है और उसके अनुसार हमें उसके फल प्राप्त होते हैं। तो जब किसी मनुष्य के जीवन में यह देखा जाता है कि उसने कुछ इतने पाप कर्म नहीं किए परंतु फिर भी इतने दुख भोग रहा है, और उसके विपरीत जो व्यक्ति पाप किए जा रहा है परंतु बहुत सुखी जीवन जी रहा है, तो इंस्टेंट और डिलेड कर्मिक रिएक्शन से समझ में आता है कि तुरंत तात्कालिक जो परिणाम होते हैं किसी कर्मों के और विलंबित परिणाम होते हैं कर्मों, इंस्टेंट एंड डिलेड। तो ये मनुष्य जीवन जंक्शन के समान है, चाहे पुण्य चाहे पाप ये एक दूसरे को काटते नहीं, अपना अपना सेपरेटली इनको फल, इनका परिणाम प्राप्त होता है। तो हमने ये कुछ उदाहरण लिए थे कि ये जो कर्म का स्वभाव क्या है, जैसे कि एक सिक्का उसके दो पहलू होते हैं, वैसे ही ये जो संसार सागर है जो कि हमारे कर्म और हमारे कर्म के परिणाम से बना हुआ है, और फिर जैसे कि हमने कहा कि एक बीज जब कोई किसान बोता है तो वो बीज धीरे धीरे जब फलोन्मुख होता है तो उसके अंदर एक और बीज जो कि एक और पेड़ की शक्ति रखता है। उसी प्रकार से बताया गया है कि जैसे हम मनुष्य कर्म करते हैं तो वो बीज के समान है, और उस बीज या बीजारोपण से वहां पर पौधा और फिर एक पेड़ वृक्ष, और वृक्ष में इतने सारे फिर विभिन्नताएं उस वृक्ष की दिखती हैं, जैसे कि टहनियां, पत्ते, फल, फूल, और उस फल के अंदर फिर से बीज उसी पेड़ या नए पेड़ को उत्पन्न करने के लिए। तो अक्सर ये देखा जाता है कि वो पेड़ मरने से पहले एक बीज छोड़ जाता है और वो बीज फिर एक और वृक्ष का निर्माण करता है। उसी प्रकार से ये जो वृक्ष रूपी शरीर है, ये जिन कर्मों से बना हुआ है, उन कर्मों को जीते जीते जब ये शरीर का अंत होता है तो अंत होते होते ये एक और शरीर का निर्माण करता है, जैसे कि वो वृक्ष बीज छोड़कर जाता है। तो ये सारे उदाहरण हमने लिए थे, आपको याद होगा, कर्म और उसका परिणाम। मुझे याद है जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो ट्रेनिंग का एक भाग था फायर आर्म्स की ट्रेनिंग, अलग अलग, जैसे कि रिवॉल्वर है, फिर मशीन गन है, ये सारे अलग अलग जो गन्स हैं, फायर आर्म्स की ट्रेनिंग। तो मुझे वो दिन याद है कि जो हमारा बैच, जिस कंटिंजेंट को मैं लीड कर रहा था, तो मुझे लीडर बनाया हुआ था, जैसे आप देखते हो मार्च पास्ट होता है रिपब्लिक डे परेड, वैसे हमको मार्च पास्ट करते हुए फायरिंग रेंज तक जाना, और ये वहां पर वो भी एग्जामिन हमारा होता था कि सब लोग मार्च पास्ट करते हुए लेफ्ट राइट करते हुए वो सिंक्रोनाइज तरीके से वहां तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। उस पर भी ग्रेडेशंस होते थे, मार्क्स मिलते थे। तो अब सोचिए कि ये जो पूरा कंटिंजेंट जा रहा है, उसको फ्लाइट बोलते थे, पूरी फ्लाइट जा रही है, तो फ्लाइट को जो लीड कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि फ्लाइट को लेफ्ट टर्न कराए, राइट टर्न कराए, और जो नियम डिफेंस का कि यदि कोई सीनियर अफसर वर्दी में बगल से गुजर रहा है, चाहे वो जीप में गुजर रहा हो, चाहे वो उसके मोटर बाइक में गुजर रहा हो, चाहे वो चलते हुए जा रहा हो, तो जो फ्लाइट सीनियर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे फ्लाइट को कमांड दे, सैल्यूट देना है, सीनियर अफसर को सैल्यूट देना है। तो अब हुआ क्या कि एक हमारे वहां के फायरिंग ऑफिसर आगे वो बने, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुरली उनका नाम था, बहुत स्ट्रिक्ट, उनके नाम से सब लोग कांपते थे कि मुरली आ गए, जैसे कि बोलते ना गब्बर, ऐसे वो हमारे यूनिट के गब्बर सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुरली। तो वो इतनी तेज अपने जीप से गुजर रहे थे कि मुझे दिखाई नहीं दिया कि कौन अफसर बैठा हुआ या है कि नहीं, या केवल कोई ड्राइवर है, परंतु वो खुद जीप चला रहे थे। अब जीप चलाने के उनके ड्राइवर भी होते हैं कई बार, तो ड्राइवर को आपको सैल्यूट नहीं करना, उसको कर दिया वो अलग ऑफेंस हो जाएगा। तो इतनी तेजी से उसने जीप दौड़ाई उस अफसर ने, तो मुझे दिखाई नहीं दिया, तो कमांड नहीं हूं, मैंने दिया अपने फ्लाइट को। आगे चलकर दीप जीप रुक गई, जैसे जीप रुक गई मैं समझ गया कि इसके अंदर कोई अफसर बैठा था जिसको सैल्यूट नहीं दिया गया, जैसे कि हम लोग इस्कॉन में कहते हैं ना दंडवत, है ना, कोई सीनियर डिवोटी को अगर दंडवत नहीं देते तो फिर कई बार दंडा मिल जाता है। तो अब जीप रिवर्स हुई। अच्छा, अब मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये अंदाजा आ गया था कि कोई अफसर बैठा है, ये कोई अंदाजा नहीं थी कि कौन सा अफसर बैठा है। जब पता चला कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुरली, अब तो मुरली की धुन नहीं सुनाई देगी, बहुत मधुर होती है मुरली की धुन, यहां पे और कुछ बजेगा। तो उन्होंने पूरी फ्लाइट को कहा यू कंटिन्यू अहेड, मुझे रोक दिया, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं। वो लोग इत्मीनान से कि भाई हमारा जो सरदार लीडर कप्तान है उसकी गलती है, जो कुछ है उसको मिलना है। तो पूरी फ्लाइट को आगे भेज दिया, मुझे रोक दिया। और कड़कती धूप थी, पूरा ओपन ग्राउंड था वो, तो उसने कहा अब यहां खड़े रहो तुम और तुम 2000 सल्यूट मारोगे, इस धूप में खड़े रहकर तुम 2000 सल्यूट मारोगे। और एक को खड़ा कर दिया, तुम काउंट करते रहो कि इसने 2000 सल्यूट मारे हैं कि नहीं। तो आप ये सीन इमेजिन करो, पूरा ओपन ग्राउंड है, पूरे ग्राउंड के बीच में कड़कती धूप में मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा एक दो पागलों की तरह, कि वहां पर कुछ ऐसे प्राणी भी घूम रहे थे, कुत्ते भी देख रहे थे। कि ये क्या पागलपन चल रहा है। अब हुआ क्या कि जो पनिशमेंट मिला था तो मैंने शुरू किया अपना, एक के बाद सल्यूट मार रहा हूं। तो वहां के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जिसको कैडो बोलते हैं, तो वो पेट्रोलिंग पे अपने जीप में घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये ग्राउंड के बीच में ये कौन बंदा है, ये किए जा रहा है, ये किए जा रहा है। तो रुके आके, मैंने कहा भाई मार तो रहा हूं, आप भी आ जाओ, बैती गंगा में हाथ धो लो। तो उन्होंने पूछा क्या चल रहा है ये, तो फिर मैंने कहा, करते हुए कहा, क्योंकि रुकना नहीं चाहिए, पनिशमेंट मिला हुआ है। तो उन्होंने जब सुना कि क्या माजरा हुआ है, वो गए फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुरली की ऑफिस में, गए वो ऑफिस में चले गए थे, वो ऑफिसर मेरे को पनिशमेंट देके वो अपना चले गए ऑफिस में। तो ये कैडो ये गए और उनको बुला कर लाए। अब ये बड़े ऑफिसर तो उनको आना पड़ा और उनको बोला आपको रूल पता है सैल्यूट का, रूल क्या है कि जब अगर कोई जूनियर सीनियर को सैल्यूट देता है तो सीनियर को रिटर्न करना है। सीनियर को उसको रिटर्न करना है तो सामने खड़े रहो, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर मैं सोचा शुरू करें पहले से, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने एक्सप्रेशंस को इतना कंट्रोल कर रहा था कि सामने कौन है जो पूरे यूनिट में दहशत फैलाने वाला ये अफसर सामने खड़ा है, ये खुले मैदान में कड़कती धूप में मैं मार रहा हूं सैल्यूट, वो मुझे सैल्यूट, मैं यहां पर सैल्यूट, वो मुझे सैल्यूट। वो कैडो ने फिर वो जो असिस्टेंट था उसको कहा अब काउंट रखना तुम, हो सकता है शायद उन दोनों की बनती नहीं होगी, होता है कई बार ऐसा। तो यहां पर ये मुझे किस्सा याद आ गया कि कैसे ये जो कर्म का नियम है इसी प्रकार से है। कि हाँ यदि किसी कर्म, किसी व्यक्ति के किसी कर्म से कोई एसोसिएटेड है और बिना नियमों के उसको पालन यदि नहीं किया जा रहा है तो उसको भी उसका फल प्राप्त होता है। फिर हमने ये सुना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, और हमने ये जो चार कारण हम लोग हमारे जीवन में डिसीजंस लेते हैं बेस्ड ऑन दीज फोर, ट्रेडिशंस, कल्चर, लॉजिक और फीलिंग्स। देखो पारंपरिक तरीके से चीजें, हम कुछ चीजों का पालन करते हैं, परंतु कई बार अभी उसके अंदर यदि हमने लॉजिक नहीं लगाया या उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है तो हालांकि वो पारंपरिक चीजें होंगी परंतु वो हम अपने पूर्ण चेतना से नहीं कर पाए। और यदि किसी ने, जैसे कि मैं जब पहली दफा अमेरिका गया था तब देखो अमेरिका देश किस लिए प्रसिद्ध है, अमेरिका देश प्रसिद्ध है अपने मॉडर्न कल्चर के लिए। तो वहां पर दक्यानुसी ख्यालात के लोग नहीं दिखते उनके कल्चर में, इस प्रकार से बोला जाता। परंतु मुझे याद है शिकागो, उस शहर में एक प्रोग्राम के लिए हम जा रहे थे तो हमने देखा एक ब्रिज, बड़ा ब्रिज था, ऊपर से ट्रेन उस पर से गुजर रही थी और नीचे से रोड था, तो उस ब्रिज के वॉल पर बहुत भीड़ जमी हुई थी। तो फिर हमारी गाड़ी भी नहीं निकल पा रही थी तो वहां पर रुक गई हमारी गाड़ी, और फिर पता लगाया तो दीवार के ऊपर लोग कैंडल्स ऑफर कर रहे थे, दीवार पर कुछ तो ऐसे उनको दिख रहा था उसको कैंडल्स ऑफर कर रहे थे। तो फिर पता लगाया कि हो क्या रहा है, तो बताया गया कि मदर मेरी और बेबी जीसस वो इस दीवार पर दिख रहे हैं। जैसे होता ना कि कोई ऐसे अलग कहीं पर, जैसे गणेश जी शिव जी दूध पी रहे थे एक वो भी साल था, वैसे यहां पर मदर मेरी और जीसस, तो सब लोग वहां पर कैंडल ऑफर कर रहे हैं। अब देखो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में ये खबर आई फोटोज के साथ कि ऐसे ऐसे देखा गया, और तीसरे दिन पता चला कि वो था क्या कि कोई शराबी पिछले रात शराब पिए हुए उस दीवार के ऊपर उसने पेशाब कर दिया था, तो सुबह सूर्य की रोशनी उसके सूखे हुए पेशाब पर जब गिर रही थी तो सबको ऐसा लग रहा था, और सब अपनी मोमबत्तियां लाकर कहां घुमा रहे हैं। तो कई बार अगर ट्रेडिशंस में लॉजिक नहीं लगाया जाए और उसमें फीलिंग्स नहीं हो तो वो जो ट्रेडिशंस हैं, वो सारी जो परंपरा है वो किसी काम की नहीं। इसलिए जैसे अक्सर लोग शिवजी के नाम पर भांग पीते हैं, शिवजी के नाम पर नशा गांजा पीते हैं, जय जय शिव शंकर, कांटा लागे न कंकड़, प्याला तेरे नाम का पिया, तो शिवजी के नाम का प्याला पीते हैं। तो इसमें क्या है, उनको जो उनका इंद्रिय भोग संतुष्ट करना है परंतु उसमें परंपरा लानी है कि हम परंपरा के आधार पर उस इंद्रिय भोग को करेंगे। तो शिवजी इस कलयुग में आदि शंकराचार्य के रूप में आए, तो उन्होंने जब देखा कि कैसे महादेव शिवजी को गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा तो वो अपने अनुयायियों के साथ एक बार निकले हुए थे यात्रा पर, तो उन्होंने देखा उनके अनुयायी भी उनकी नकल करने के पीछे उतारू थे, इसलिए वो शिवजी की नकल करना बहुत लोग चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते, इफ यू थिंक शिवजी ड्रिंक्स गांजा और स्मोक्स गांजा, शिवजी हैज ऑल्सो ड्रंक पॉइजन। तो प्रभुपाद हर समय कहते तो वो भी करो, केवल आधा भागी क्यों कर रहे, हाँ पूरी पूरी नकल करो शिवजी की। तो आदि शंकराचार्य अपने अनुयायियों के साथ यात्रा पे निकले हुए और एक शराब की दुकान में गए और उन्होंने मटका भर शराब पी लिया और कहा, ब्रह्मन गोज इनटू ब्रह्मन, ब्रह्मन जो है वो ब्रह्मन के अंदर जा रहा है। तो शराब को ब्रह्मन कहा, स्वयं को ब्रह्मन कहा, तो यदि ब्रह्म ब्रह्म में जा रहा है कोई फर्क नहीं। तो अनुयायी इतने कन्विंस हो गए गुरुजी ने क्या फर्स्ट क्लास लॉजिक इस्तेमाल की, सभी जाके अपना अपना मटका उठाए, ब्रह्म ब्रह्म में विलीन हो रहा है। तो वहां से निकले, वो शराब की दुकान से निकले, आगे गए शंकराचार्य, देखे कि एक लोहार की दुकान थी और वहां पे लोहा तप रहा था। तो अब शंकराचार्य वो तपते हुए लोहे को लिए, और वो शंकराचार्य महादेव हैं वो, तो उन्होंने तपते हुए लोहे को पी लिया और बोले, ब्रह्म ब्रह्म में गया, ब्रह्म ब्रह्म में विलीन हुआ। और बाकी के अनुयायी अब देख रहे हैं, तो शंकराचार्य ने उनकी तरफ देखा, क्यों भाई अब मेरी नकल नहीं करोगे, अब कहां गई तुम्हारी फिलॉसफी। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए कि परंपरा, ये चारों चीजें आवश्यक हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में, ये चारों चीजें आवश्यक हैं, इसलिए इन चारों का समन्वय आवश्यक है। तो हमने पिछली दफा सुना कि भगवद गीता के अंदर, भगवद गीता पारंपरिक है, इसी अध्याय का श्लोक है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। तो भगवद गीता पारंपरिक है, भगवद गीता सांस्कृतिक है, भगवद गीता तार्किक है, तर्क है भगवद गीता के अंदर, और फीलिंग्स हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के फीलिंग्स को उजागर किया स्वयं के लिए। तो पारंपरिक, सांस्कृतिक, तार्किक और भावनिक, ये चारों हैं जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं, वो हम भगवद गीता में पाते हैं। तो यदि कोई कहे कि नहीं, मैं मेरे लाइफ के डिसीजंस केवल परंपरा के आधार पर लेता हूं, मैं मेरे लाइफ के डिसीजंस केवल कल्चर के आधार पर लेता हूं, या लॉजिक के आधार पर लेता हूं, या फीलिंग्स के आधार पर लेता हूं, तो भगवद गीता वो पुस्तक है जिसके अंदर आपको ये चारों का परफेक्ट बैलेंस मिलेगा। और इसलिए जब ऐसे परफेक्ट बैलेंस से हम हमारे डिसीजंस लेते हैं भगवद गीता पर के आधार पर, तब जाकर हम ये कर्म के नियम से परे जाते हैं। तो हमने फिर उदाहरण लिया था कि जैसे अनुभव, फीलिंग्स जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि फीलिंग्स के आधार पर कई बार लॉजिक फेल हो जाता है, परंपरा कल्चर वो भी फेल हो जाते हैं, फीलिंग्स के आधार पर लोग बहुत कोई डिसीजंस ले लेते। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक पर उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों है, वाई इज कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो एक डिसाइपल ने कहा, बिकॉज भगवद गीता सेज, प्रभुपाद कहे भगवद गीता तो एक पुस्तक है। तो एक ने कहा, अच्छा तो ये गलत उत्तर हो गया, प्रभुपाद आप बोलते हो। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति हूं, मैं तो कुछ भी बड़बड़ाता रहता हूं, मेरे पे क्यों विश्वास कर रहे। तो भगवद गीता को रिजेक्ट कर दिया, प्रभुपाद अपने आप को रिजेक्ट कर दिए तो अभी क्या आंसर होगा, व्हाई कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। फिर प्रभुपाद ने कहा बिकॉज यू कैन एक्सपीरियंस कृष्ण, तुम कृष्ण का अनुभव कर सकते हो, वो अनुभवी भगवान है। तब फिर उनको समझ में आया कि हमें केवल, हां भगवद गीता ने तो कहा है, प्रभुपाद ने भी कहा है, परंतु हमने कितना अनुभव किया है उन भगवान का, ये भगवान हमसे पूछना चाहेंगे। इसलिए भगवद गीता हमें अनुभव और अनुभव के पश्चात फीलिंग्स, तो अब यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि हम किसी आध्यात्मिक पथ को क्यों अपने जीवन में अपना रहे हैं। जैसे हाल ही में मैं सूरत गया था तो वहां पर प्रोग्राम के पश्चात जब प्रश्नोत्तर, तो उसमें नया एक व्यक्ति, उसने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, कि उसने पूछा कि मैं अलग अलग जो प्रवक्ता है उनको मैं सुनता हूं, बहुत से हैं जो कि अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं, भारत में कथाएं देते हैं, भगवान के विषय में बताते हैं, मुझे सब अच्छे लगते हैं और आपके इस्कॉन के भी प्रवचन अच्छे लगते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि इस्कॉन ही क्यों चुना आपने, आप भी मेरी तरह ये एक्सप्लोर करते रहते, कितने सारे अच्छे अच्छे प्रवक्ता हैं, क्योंकि इस्कॉन में आने के बाद फिर आपको शायद आप बाधित हो गए होंगे कि बस आपको बस जो इस्कॉन से संबंधित प्रवचनकार है उनको ही सुनना। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आपने क्या पढ़ाई की है, उन्होंने कहा मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मैंने कहा कौन से कॉलेज से की है, तो उन्होंने बताया ये फलाना फलाना कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मैंने कहा आपने उसी कॉलेज से इंजीनियरिंग क्यों की, इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत है पूरे भारत में, पूरे विश्व में इतने, उसी कॉलेज से क्यों की, तो उन्होंने बताया कारण दिए कि वो कॉलेज मेरे पास था, वो कॉलेज में अच्छा रेपुटेशन है, कॉलेज का ग्रेड्स अच्छे मिलते हैं, उस कॉलेज का नाम है, ये है वो है, प्रोफेसर्स अच्छे हैं। तो मैंने कहा कि मान लो कि कोई ये कहे कि मुझे इंजीनियर बनना है परंतु इसी कॉलेज से बनना है, और किसी कॉलेज से कोई इंजीनियर बन ही नहीं सकता, या मैं नहीं बन सकता, तो उसको प्रश्न क्या पूछेंगे, आर यू इंटरेस्टेड इन नॉलेज और आर यू इंटरेस्टेड इन कॉलेज। फिर मैंने पूछा आपने ये जो कपड़े पहने हुए, टी शर्ट और जीन्स पहना हुआ था उसमें, तो मैंने पूछा कि आपने ये जो कपड़े पहने ये आपने खरीदे थे, उसने कहा हाँ मैंने खरीदे थे। तो मैंने पूछा कि यही कपड़े आपने क्यों खरीदे जो अभी पहने आप, तो बोला ये कपड़े क्यों खरीदे, अच्छे लगे मुझे, मेरी पसंद है। तो मैंने कहा देखो आपने आपकी पसंद बताई, अभी जहां पर भी आप खरीदने गए होंगे बिग बाजार इत्यादि, वहां पर बहुत सा रेंज होगा, तो अगर आप एक एक कारण दोगे मुझे कि ठीक है रेट अच्छा था, तो उस रेट में तो और भी टी शर्ट्स अवेलेबल थे, आपने यही टी शर्ट क्यों खरीदी, ने मेरे को कलर अच्छा लगा, अच्छा तो मतलब आपने किसी चीज के ऊपर एक निर्णायक डिसीजन लिया कि कलर मेरा फेवरेट है, रेट भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है और कंफर्टेबल भी है, और मेरे परिवार वाले भी पसंद करेंगे इसे, है ना। मैंने कहा हाँ, तो देखो आपके ये टी शर्ट खरीदने के पीछे ट्रेडिशन है कि आपके परिवार के अनुसार अपने कपड़े खरीदे, उसके पीछे कल्चर, कल्चर मतलब प्रेजेंट फैशन क्या है वो भी आपने देखा, लॉजिक लगाया कि टी शर्ट अगर 1 करोड़ की है तो नहीं खरीदेंगे, लॉजिक लगाया ना, दिमाग लगाया कि रेट भी सही होना चाहिए, और फीलिंग्स कि कंफर्टेबल है। तो मैंने कहा देखो आजकल ये ट्रायल रूम होते हैं, या आप जाओ कपड़े खरीदने जाओ तो ट्रायल रूम्स होते हैं, तो वहां पर इतनी वैरायटी होती है कि लोग जाकर ट्राई कर सकते हैं। पहले नहीं था, पहले खरीदो जो भी ट्राई करना है करते रहना जिंदगी भर घर पे। आजकल ट्रायल रूम होते हैं तो ट्रायल रूम में जाके पहन के देख लो, शीशे लगे होते हैं कि कैसे तुम दिख रहे हो, पसंद आया लो नहीं तो वापस लौटा दो। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं पता है, आप ट्रायल रूम में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, इसका भी सुनो उसका भी सुनो, ये कपड़ा लो ट्रायल करो। मान लो कि आप बिग बाजार गए हो और 8 घंटे केवल ट्रायल रूम में अंदर बाहर कर रहे हो, तो दुकानदार क्या बोलेगा, अरे भैया खरीदना ही नहीं खरीदना है, मेरी ड्यूटी खत्म हो रही है, तुम सुबह से लेकर खाली ट्रायल रूम में जा रहे हो आ रहे हो, ट्रायल रूम में जा रहे हो आ रहे हो। तो मैंने कहा ये जो आपका अप्रोच है ना, ये उसी के समान है जैसे कोई कुछ खरीदने गया है लेकिन जा रहा है, ये भी अच्छा है, इसको ये भी अच्छा लग रहा है। अरे पहनोगे तो एक ही सेट की सारे 8-10 जितने अच्छे लगे सारे एक साथ पहन लोगे। तो वैसे ही मैंने उनको कहा, फॉर मी इफ यू आर आस्किंग मी व्हाई डिड आई ज्वाइन इस्कॉन, आई डिडंट ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन, आई ज्वाइंड अ प्रोसेस, आई ज्वाइंड अ पर्सन। व्हाई? बिकॉज इट फेल्ट कि मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहां पर हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमारे ये जो डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस केवल किसी फीलिंग्स के आधार पर ना लें, केवल ट्रेडिशन के आधार पर ना लें, केवल लॉजिक के आधार पर भी मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी आपके लॉजिक के परे होंगी। कि अक्सर लोग जैसे हमें देखते हैं ना, हमें जब देखते हैं इस पहनावे में तो हर समय वो उस समय लॉजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि ये लॉजिक बताओ, ये जो तुम धोती पहनते हो, ये कुर्ता पहनते हो, ये धोती कुर्ता पहनना क्या जरूरी। मैं पहले भी एक बार बता रहा था तो एक ने मेरे को पूछा था ये जो सामने आपकी ये क्या है, ये बेडशीट तो पहनी है लेकिन ये सामने क्या लटका रखा। अब हमारे तो बहुत काम आता है, रुमाल उमाल के भी काम आ जाता है, हाथ वगैरह धोए तो सामने वाला काम आ जाता है, इसमें लॉजिक है एक्चुअली। तो मैंने देखो टाई पहना हुआ था तो मैंने पूछा कि यहां पर तुमको दिख रहा है ये जो लटका हुआ है, ये जो तुमने यहां पे कंठ लंगोट बांध रखा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। और उसके पीछे का लॉजिक उसको पता ही नहीं था जब उसको मैंने बताया कि मिडिवल टाइम्स में वो यूरोप में इतनी सर्दी होती थी कि वो बार बार रुमाल निकालकर जो नाक से बह रहा है उसको साफ करने की तकलीफ ना हो इसलिए यहीं बांध लेते थे वो लोग रुमाल काम करते समय कि टाइम बचे। तो देखो उसके पीछे का लॉजिक क्या था, उसको कुछ पता नहीं था। तो अक्सर लोग ये नहीं है कि केवल स्पिरिचुअलिटी में वो लोग का क्वेश्चन होता है कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये दंडवत देने के पीछे क्या लॉजिक है। वो लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो केवल लॉजिक के आधार पर भी आप किसी अध्यात्म के पथ को नहीं पालन कर पाओगे, उसके अंदर आपको लॉजिक भी साइड में रखना पड़ेगा, आपको श्रद्धा उसको लाना है। तो फिर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। अब देखो ये जो विषय है ये ऐसा विषय है कि इसके अलग अलग नाम है, डेस्टिनी। ये डेस्टिनी को लेकर कितने प्रश्न चल रहे हैं, सदियों से चल रहे हैं। क्या प्रश्न, लोग क्या क्या नाम दिए, नसीब, भाग्य, तकदीर, मुकद्दर, नियति, दैव, है ना, कितने नाम दे रखे हैं इसको। इंग्लिश में फेट, लक, डेस्टिनी, इंग्लिश में कितने नाम। तो जैसे मुझे जब ये प्रश्न पूछा गया कि कर्म या फ्री विल और डेस्टिनी में अंतर क्या, तो मैंने कहा जो आपका हाइट है वो आपकी डेस्टिनी है, और आपका जो वेट है, वजन है, वो आपका फ्री विल है। तो होता क्या है कि पैदा सब बच्चे होते हैं, बच्चे ही पैदा होते हैं, लेकिन फिर और वो कुछ करता नहीं है, हाइट उसकी बढ़ती रहती है, उसने कुछ किया नहीं है हाइट को बढ़ाने के लिए, कितना भी इधर उधर कसरत कर ले हाइट उसकी अपने आप बढ़ती रहती, लेकिन वेट वो उसके फ्री विल पर आधारित है ना। तो बहुत बार देखा जाता है कि उसके फ्री विल का प्रदर्शन वो वजन कांटे के ऊपर और फिर डॉक्टर के रिपोर्ट्स के ऊपर समझ में आता। तो अब ये जो मुद्दा है कि कर्म और डेस्टिनी, तो इन दोनों में अंतर क्या है? कर्म का अर्थ है इंडिविजुअल इनिशिएटेड एक्शन विच इज विद इन आवर कंट्रोल, कि जो मेरे कंट्रोल में है, जो मैं अपने फ्री विल से चयन कर करता हूं। और डेस्टिनी फिर क्या हो जाता है? अननोन एलिमेंट विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। जैसे गीतामृत के कार्यक्रम में आप लोग आए, आपने जो कर्म किया है ना कि चलो आज बुधवार है, इनका गीतामृत का कार्यक्रम, चलो चलते, आप आ गए। अब बहुत से होंगे जो पहली दफा आए होंगे, तो पहली दफा आपने किसी से सुना, या हो सकता है सुनने के पश्चात आपने ये डिसीजन लिया, उसने भी आपको जबरदस्ती नहीं की होगी कि आना ही पड़ेगा, नहीं तो देख लेना, ऐसा नहीं था। ठीक है, बताया किसी ने, या आप घूमते फिरते देखा बहुत गाड़ियां खड़ी हुई हैं कि कुछ आवाजें आ रही हैं, चलो देखते हैं क्या चल रहा है, यहाँ पे आ गए, बैठ गए यहाँ पे, आपको पता नहीं स्पीकर कौन है, कोई भी हो सकता है, एक जैसे कपड़े होते हैं, घूमते फिरते हैं, माइक बहुत लोगों के पास होता है, तो स्पीकर कौन है पता नहीं। अब आके आप बैठे, ये आपने कर्म किया, अब यहां पर आपको क्या सुनने मिलेगा, ये आपकी डेस्टिनी। क्या मेनू है, वो भी आपकी डेस्टिनी। यहां पर कोई होटल के जैसे मेनू कार्ड नहीं मिलता है कि ऑर्डर कर दो कि आज मेरा है ना पाव भाजी खाने का मन कर रहा है तो आज मेरे लिए नहीं। जो उधर किचन में, चाहे वो आलू मटर की सब्जी हो, राजमा हो, हाँ, या खिचड़ी हो, या पाव भाजी भी हो सकती है। तो होता क्या है, अक्सर गीतामृत में हम अपनी तकदीर आजमाने आते हैं। वो भी कारण हो सकता है, वो भी तकदीर आजमाने आते हैं कि चलो चार हफ्ते से मैं देख रहा हूं पाव भाजी नहीं बनी है, तो इस हफ्ते होगी, क्योंकि चार हफ्ते से नहीं बनी है। और मैंने देखा था कि बहुत सी सब्जियां, मिक्स्ड सब्जियां आई थी सुबह, तो हो सकता है कि वो पाव भाजी की स्मेल भी थोड़ी सी आ रही थी। फिर जब काउंटर पता चलता है कि वही आलू मटर किसी दूसरे बिल्डिंग में बन रही थी पाव भाजी। तो एक बार पार्वती देवी ने शिव जी से पूछा कि मैं संसार में देखती हूं कि ये क्या विडंबना है कि एक जो अपना जीवन बद से बदतर बनाते जा रहा है और एक है जो अपना जीवन वो समृद्ध बनाते जा रहा है, तो ये ऐसी विडंबना क्यों, समानताएं क्यों नहीं है? तो शिवजी ने पार्वती से कहा, चलो तुमको डेमोन्स्ट्रेशन कर दिखाएं इसका। हम पृथ्वी पर चलते हैं, भेष बदल कर जाते हैं, पति पत्नी बनकर साधारण मनुष्य बनकर चलते हैं, कोई जटा नहीं, कोई वहां ऊपर शंख नहीं, कोई सांप नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल दंपति बनकर शिव पार्वती पृथ्वी पर आए एक गांव में। तो वहां पर अब पार्वती कहीं कि तो हम लोग यहां पर रहेंगे मनुष्यों की तरह। हाँ, मनुष्यों का भेष धारण किया तो मनुष्यों की तरह रहेंगे, अभी तुम्हें यहां पर चूल्हा चौका करना होगा जैसे मनुष्य करते हैं। तो मैं जाता हूं काम पर, तुम्हें चूल्हा चौका करना है तो चूल्हा अरेंजमेंट करो तुम। कौन है? साक्षात दुर्गा देवी। तो अभी पति चले गए काम पर, अब चूल्हा चौका तैयारी करनी है तो चूल्हा कैसे लगाएं? तो गांव में ईंट ढूंढने के लिए गई पार्वती देवी। तो उन्होंने, कोई ऐसा घर था टूटा फूटा, उसकी दीवारें थी, तो देखा कि जर्जर ईंटें पड़ी हुई हैं यहां पर, तो उठा लिया वो ईंटें कि चलो इसका चूल्हा बना देते। शिवजी जब आए, शिवजी ने पूछा ये ईंटें कहां से लाई? तो पार्वती जी ने कहा अरे मैं गांव में ढूंढने गई थी तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे दीवारें टूटी हुई थी किसी के घर की, वहां पर ईंटें ऐसी जर्जर पड़ी हुई थी, उठा लिया मैंने। तो शिवजी ने पूछा कि वही ईंटें क्यों उठाई तुमने, दूसरी ईंटें क्यों नहीं उठाई उस गांव की, बहुत सी ईंटें होंगी गांव के अंदर। तो पार्वती ने कहा अरे वो ऐसी पड़ी हुई थी, किसी काम की नहीं थी। तो मैंने कहा यही लोग करते हैं अपने जीवन के साथ। तुम्हारा प्रश्न था ना कि कोई बद से बदतर क्यों होते जा रहा है, कोई समृद्ध से और समृद्ध क्यों होते जा रहा है, कि वो अपने जीवन के जर्जर ईंटों को ऐसे ही फेंक देते हैं, उसके बाद उन ईंटों को होता क्या है, वो बद से बदतर होते जाते हैं। और फिर तुमने उन घरों के दीवारों की ईंटें नहीं लाए जिनके घरों की दीवारें पक्की थी। तो उसी प्रकार से जो मनुष्य अपने जीवन की दीवारों को पक्का रखता है, पक्की ईंटों से बनाकर रखता है, उसकी ईंटें का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। परंतु जो अपनी दीवारों की ईंटों को बिखेर के रखा हुआ है और फिर उसकी जो बिखरी हुई वो ईंटें हैं वो जर्जर हो जाती हैं और फिर उसे कोई भी यहां वहां ले जाता है। तो ये शिक्षा किसने दी? शिवजी ने पार्वती जी को दी। तो अब हम कुछ उदाहरण लेंगे। सबसे पहला उदाहरण कर्म और डेस्टिनी का, कि विद्यार्थी परीक्षा लिखता है, क्या लिखता है उस परीक्षा के पेपर में वो उसका फ्री विल है। 3 घंटे उसको जो मिला है, उस 3 घंटे में वो कितने भी सप्लीमेंट ले और जो लिखे, कोई उसको रोकने नहीं वाला है। तुम तुम्हारी बचपन की आत्मकहानी लिखो, बचपन से लेके कि तुम कौन से दिन पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कौन से अस्पताल में पैदा हुए, डॉक्टर कौन था, नर्स कौन थी, फिर बाद में तुमने कब दलिया खाना शुरू किया सबसे पहले, कौन सा पहला खिलौना था, पूरी स्टोरी लिख सकते हो, सप्लीमेंट मांग मांग के लिख सकते हो। लेकिन फिर रिजल्ट में तुम पास होगे कि नहीं होगे उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं। मुझे याद है हम जिस कॉलोनी में थे तो अक्सर शायद एग्जामिनेशन का सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा ही अभी भी होता होगा कि अलग अलग ईयर के बच्चे बैठते थे। अब जैसे अगर मैं 9th स्टैंडर्ड में हूं तो फिर 8th स्टैंडर्ड का बच्चा मेरे बगल में रहेगा। तो मुझे याद है हमारे बिल्डिंग का एक बंदा, सतीश उसका नाम था, तो क्वेश्चन पेपर मिला उसे, फाइनल एग्जाम 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर मिला और वो इतना ज्यादा सकपका गया क्वेश्चन पेपर को देखकर, 15 मिनट हुए उसने लिखना शुरू ही नहीं किया। तो एग्जामिनर देख रहा है कि सब लोग लिखना शुरू किए, ये लिख क्यों नहीं रहा है, आधा घंटा हो गया। उसको जाके पूछा सब ठीक है, पढ़ाई तो की ना। तो उसने आधे घंटे बाद एग्जामिनर को कहा सर एक भी क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाई किया उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। तो अभी तक मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर तो तुम्हारे हाथ में है, एक भी क्वेश्चन तुमने, मतलब जो तुमने पढ़ाई की उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं? नहीं सर एक भी नहीं। आधे घंटे बाद वो एग्जामिनर ने उसका क्वेश्चन पेपर देखा तो जो दूसरे ईयर का था उसका गलती से इसको मिल गया था। और ये इतने टेंशन में था इसने देखा ही नहीं कि 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर मिला है। और ये टेंशन में आधे घंटे की, मैंने तो इसकी पढ़ाई क्या पढ़ाई, जो क्या क्वेश्चन है। और क्या होता है कि विद्यार्थी जनरली जब देखते हैं दूसरे, वो लोग फटाफट लिखना शुरू करते तो और टेंशन आता है, ये तो शुरू कर दिया इसने तो लिखना। और सबसे ज्यादा टेंशन क्या आता है, जब वो सप्लीमेंट मांगता है, सर एक और सप्लीमेंट, एक और यहाँ पे ये ऑलरेडी एक ही पन्ना पूरा नहीं हो, ये तो सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट मांग रहा है। तो एग्जाम लिखना ये हमारे हाथ में है, रिजल्ट ये हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है कई बार किसने बहुत अच्छा पेपर लिखा हो, लेकिन वो जो होता है ना चेकर्स, जो एग्जाम पेपर चेक करते हैं, वो अपने घर पे करते हैं, तो पता नहीं उसका क्या मूड होगा। 100 आंसर शीट में जब तुम्हारा आंसर शीट आएगा तो हो सकता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ उस दिन, हाँ, और उसकी पसंद की सब्जी नहीं बनी हो, टिंडे बने हो, दूधी भोपला बना हो, मूड ऑफ हो उसका, और ऐसे मूड ऑफ में उसने देखा तुम्हारी हैंडराइटिंग में समझ में है। हो सकता है तुम्हारी तकदीर में क्या आए, वो ऐसा एग्जामिनर आया, वो ऐसे टाइम पे उसको पेपर मिले तुम्हारा। देखो कितना इंट्रिकेट है। दूसरा उदाहरण कि कोई वर्जिश किए जा रहा है, कोई जरूरी नहीं कि अच्छी वर्जिश करने के बाद उसको अच्छी हेल्थ मिलेगी। हाँ, जैसे एक बार एक पोस्ट में पढ़ रहा था कि उसमें ये बताया गया है कि नेचुरल केवल रॉ फूड खाओ और स्लिम ट्रिम रहोगे। तो उसमें रिप्लाई ये था, भैंसों को देखो क्या खाते हो, पूरे दिन जिंदगी भर कभी उन्होंने चीज खाया, कभी पिज्जा बर्गर कुछ खाया, और साइज देखो उनका। एक और पोस्ट पढ़ा था कि एक व्यक्ति वृद्ध अवस्था में पहुंच गया, और वृद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद ये व्यक्ति बोल रहा है, मुझे पता नहीं था कि ओल्ड एज में मैं इतना धनवान बन जाऊंगा। कैसे? मेरे बाल चांदी के जैसे हो रहे हैं, बाल चांदी के जैसे, दांतों में सोना लगा है, ऊपर चांदी, दांतों में सोना, किडनी के अंदर क्रिस्टल्स हैं। मेरी आर्टरीज के अंदर लोहा आयन है और अनलिमिटेड नेचुरल गैस। आई नेवर न्यू आई हैड, आई विल बिकम सो वेल्दी इन माय ओल्ड एज। तो ये दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण कि कोई किसान मेहनत करता है, खेत जोतता है, और उसके बाद में बीज बोता है, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद उसको डिपेंडेंट किस पे रहना है? बारिश के ऊपर। तो बहुत सारे मुद्दे उसके अंदर होते हैं कि गुड क्रॉप्स उसका कब होगा। अच्छा, ये बहुत एक और महत्वपूर्ण विषय है कि पढ़ाई लिखाई कर अपने आप को सजा संवार कर जब कोई शादी की उम्र तक आता है तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि जो जीवन साथी अब मिलेगा या मिलेगी वो भी उसी क्वालिफिकेशन का होना चाहिए और होनी चाहिए, है ना? तो वो लोग एडवर्टाइज भी उस प्रकार से करते हैं ना। कैसे आजकल ये मैट्रिमोनियल्स में एडवर्टाइज कैसे करते हैं, रिक्वायर्ड फेयर कॉम्प्लेक्शन, एजुकेटेड, वेल स्पोकन, गुड लुकिंग, सारे ऐसे ऐसे कि जैसे अभी ब्रह्मा जी को एक अलग से बनाना होगा इनके लिए। तो कितनी चिंता होती है कि कौन सा लड़का मिलेगा, कौन से घर में जाएगी। जैसे मुझे याद है जब बचपन में, अभी हमारी सिस्टर की शादी की बातें होता है ना कि जब वो शादी की एज के आती हैं तो जो घर के चर्चाएं घुमा फिरा के चाहे कोई कुछ भी खा रहा हो डिनर लंच वो चर्चा उसी पे जाती है। तो मुझे याद है कि और विशेष रूप से अगर घर में वो बेटी है तो मुझे याद है हमारी सिस्टर को लेकर इतने डिस्कशंस होते थे, पता नहीं कौन सा लड़का मिलेगा, कहाँ शादी होगी, ये मंत्र था शादी होने से पहले। हाँ, लड़कियों के लिए वो जो भी माता पिता जैसे ही वो उस उम्र की आती है तो क्या डिस्कशन चलता है, पता नहीं कौन सा लड़का मिले कहाँ शादी हो, पता नहीं कौन सा लड़का मिले कहाँ शादी हो, इसलिए उसको सब कुछ सिखाते हैं, उसको स्टिचिंग सीख ले, तो खाना बनाना सीख ले, आटा गूंदना सीख ले, बहुत जरूरी है, फिर ना डांस सीख ले, सिंगिंग सीख ले, सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ सीख ले, ये सब कुछ सिखाया जाता है। क्यों? पता नहीं कौन सा लड़का मिले कौन से घर में शादी हो। हाँ, यही मंत्र। तो ये कैसे था, जैसे मुझे याद है बचपन में हमको बचपन में कैसे डराया जाता था कि दलिया खा नहीं तो डॉगी आ जाएगा, टिंडे खा नहीं तो डॉगी आ जाएगा। टिंडे पता है आप लोगों को, टिंडे सब्जी मुझे बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो टिंडे खिलाए जाते थे, टिंडे खा नहीं तो डॉगी आ जाएगा, लौकी खा वो दूधी खा नहीं तो डॉगी आ जाएगा, डॉगी आ जाएगा। बचपन में वो डॉगी आ जाएगा के पीछे वो टिंडे लौकी ये सब कुछ। बाद में फिर थोड़ा बड़ा हुआ, पहली दफा डॉगी को देखा, मैंने जब डॉगी को देखा, साले तेरे चलते टिंडे खाए, तेरे चलते दूधी लौकी खाया, वो बेचारा डॉगी को भी पता नहीं है कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। अरे मेरी जिम्मेदारी थी क्या तेरे को टिंडे खिलाने की, मेरे को क्यों मारा जा रहा है। तो वैसे ही जब ये लड़की इसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जब उसको पति टिंडे जैसा मिलता है तो फिर वो उसको भी ये बोलती है, साले तेरे चक्कर में सिलाई सीखी, तेरे चक्कर में वो आटा गूंदना सीखा। थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं आजकल। क्या है, कर्म और डेस्टिनी का टॉपिक चल रहा है, संभल के कर्म करना चाहिए। फिर आइडियल पेरेंटिंग और प्रोजेनी, कि चाहे कितना भी कोई संभल के संतान उत्पत्ति करे, हाँ बहुत सारे संस्कार वगैरह सब कुछ। अब देखो हिरण्यकश्यपु ने कौन से संस्कार किए थे, लेकिन कौन पैदा हुआ, प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु ने कोई गर्भाधान संस्कार किया था, नहीं किया, असुर था वो, लेकिन प्रहलाद जैसे महाजन। और उदाहरण है कि महाराज अंग, जो कि भगवान के ऐसे अनन्य भक्त, लेकिन अंग महाराज को कौन सा पुत्र पैदा हुआ, वेण, जो कि बचपन से ऐसा राक्षसी प्रवृत्ति का था ये, कि खेल खेल में अपने मित्रों को जान से मार डालता है। एक तरफ प्रहलाद जो अपने मित्रों को भागवत की कथा सुनाते थे स्कूल में, और यहां वेण ये मार डालता था। तो एक बार राधानाथ महाराज प्रवचन में बोल रहे थे, ओनली इफ दे वुड हैव ट्रेडेड, क्या कि अगर वेण हिरण्यकश्यपु का बेटा बनता तो हिरण्यकश्यपु तो एक्सटेसी में रहता था, हाँ एकदम मेरे को ऐसा ही बेटा चाहिए था कि बचपन से मार काट करे कत्लेआम करते रहे। और महाराज अंग अगर उन्हें प्रहलाद जैसा पुत्र प्राप्त होता तो महाराज अंग एक्सटेसी में जाते। तो फिर महाराज ने कहा लेक्चर में, दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी, इसे कहते हैं दैव या तकदीर मुकद्दर, जो भी आप उसको नाम दो। तो इसलिए जब हम अपने कर्मों को इस प्रकार से अनुभव करते हैं, हालांकि इसके ऊपर हमारे और भी स्लाइड्स हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाना चाहेंगे। जिसके अंदर ये हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में इस बार के ब्रह्मोत्सव में उन्होंने ये प्ले किया कि जब हम अध्यात्म का पालन करते हैं, विशेष रूप से अगर आप प्रामाणिक परंपरा से भी जुड़े हो, जैसे कि अगर कोई इस्कॉन के मंदिर में भी आ रहा है जो कि चार परंपराओं में से प्रामाणिक संप्रदाय से है, परंतु आपके यदि रीजंस राइट नहीं है इस मंदिर में आने के, तो चाहे कितनी भी शक्तिशाली परंपरा हो, कितनी भी शक्तिशाली उसका कल्चर हो, लेकिन उसका बेनिफिट आपको उतना नहीं मिलेगा जितना उसको मिलेगा जो कि राइट रीजन से मंदिर में आ रहा है। तो ये है हमारे आज का फाइनल वीडियो।
ट्रिंग ट्रिंग, हरे कृष्णा, वेलकम टू राधा गोपीनाथ मंदिर। कौन बोल रहे प्रभु जी?
दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटी। वृंदावन धाम की जय हो, मथुरा धाम की जय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरि बोल प्रभु जी। आप ऐसे करो ना, ओम अज्ञान भी बोल दो और बाद में फोन करो ना प्रभु जी।
प्रभु बहुत अर्जेंट है।
क्या है अर्जेंट, बोलो ना प्रभु।
प्रभु ये निर्जल एकादशी का पारण टाइम क्या है?
प्रभु जी एक मिनट, पारण टाइम प्रभु जी 8:30 बजे का।
8:30 बजे क्यों?
8:30 बजे क्यों, मतलब क्या प्रभु जी? 8:30 है तो 8:30 है।
ये सरासर अन्याय है हमारे ऊपर।
क्यों?
हर बार तो 6 बजे होता है, 7 बजे होता है, इस बार 8:30 बजे क्यों? ये टेंपल मैनेजमेंट के सामने पुट अप करना चाहिए।
प्रभु जी पराना टाइम में भी आप टेंपल मैनेजमेंट को खींचेगा तो कैसे चलेगा प्रभु जी? अरे जरा तो उनको स्पेस दो यार, कम ऑन।
कहने का मतलब है,
हाँ,
भीम जी तो साल में एक ही बार निर्जल एकादशी रहते थे।
हाँ,
हम लोग 23 एकादशी रहते हैं।
हाँ,
और उसके बाद ये निर्जल एकादशी, ये तो टोटल इनटॉलरेंस है। ये टेंपल मैनेजमेंट के सामने रखो आप।
अरे बार बार आप टेंपल मैनेजमेंट के पीछे क्यों पड़े आप हाथ धो के? अरे कर रहे हैं ना वो लोग जितना सेवा करना चाहिए। ये अभी है तो है, जो सामने ये पंचांग से डिसाइड होता है ना 8:30 बजे। बोलो, आपके पास कैलेंडर नहीं है क्या? कैलेंडर है
वाले कमरे में है और हम बैठे हैं इस कमरे में। जियो का कनेक्शन फ्री है, अंबानी को भगवान की सेवा में लगा दो तो कर दिया कल आपको।
अरे प्रभु जी, लेकिन इतने दिन में आपने पराना टाइम नहीं देखा, फिर वो रूम में गए नहीं क्या इतने दिन में?
अरे हमको जब से एक भक्त ने बताया कि निर्जल एकादशी आ रहा है,
हाँ,
मैं तब से ही देख रहा हूँ।
कितना दिन से?
अरे कम से कम 10 दिन तो लगेगा। और देखा तो 8:30 बजे, हमने अगले दिन देखा तो 8:30 बजे, उसके अगले दिन देखा तो 8:30 बजे।
अच्छा,
हमने कहा कि मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है या तो कैलेंडर में कंफ्यूजन है, वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको कॉल किया मैंने।
अच्छा अच्छा, तो आपने निर्जला किया है क्या प्रभु?
हाँ, 6 बजे तोड़ दिया।
अरे प्रभु 6 बजे क्यों तोड़ा, और 2.5 घंटा रुक जाते थे 8:30 बजे तक।
कल 6 बजे तोड़ा।
मतलब एकादशी के दिन 6 बजे तोड़ा?
परसों
नहीं, मत फास्टिंग का भी चालू किया आपने?
11:30 बजे आया ऑफिस से
परसों।
हाँ
हाँ,
और फिर 12:45 बजे,
हाँ,
दाल चावल रोटी सब्जी खूब खाया।
हाँ,
11:59 पे,
हाँ,
4 ग्लास पानी पिया हमने और
फिर सो गए।
नहीं प्रभु जी,
फिर
नींबू शरबत बना रहा था।
प्रभु अभी निर्जला शुरू भी नहीं हुआ है, आप नींबू शरबत बनाते हैं?
नींबू शरबत बनाते 12:30 बजे, 6 बजे,
हाँ,
नींद में स्प्लिट फॉलो किया, कसम से जरा भी पानी नहीं पिया।
तो 6:30 बजे आप सुबह उठे और आपने नींबू पानी पी लिया एकादशी के दिन ही?
तोड़ दिया प्रभु।
क्यों तोड़ दिया प्रभु जी? ये 6:30 बजे आपको एकादशी तोड़ने का क्यों आदत है?
अरे प्रभु जी, हम वृंदावन का कैलेंडर फॉलो करते हैं।
अरे प्रभु जी, आप रहते बॉम्बे में है तो वृंदावन का कैलेंडर क्यों फॉलो करते हैं?
अरे वृंदावन का पारण टाइम सिंपल है, 6 बजे 7 बजे, और बंबई का पारण टाइम है 8 बजे 9 बजे। ये कोई पारण टाइम है? ये तो ऑफिस जाने का टाइम है।
लेकिन प्रभु जी, आप खाली वृंदावन का ही फॉलो करते हैं ना, और कुछ नहीं ना?
नहीं नहीं, क्या है, हमार मान वृंदावन, आई लास्ट माई हार्ट इन वृंदावन। बहुत सिंपल एंड सबलाइम है प्रभु। और कभी कभी तो हम मायापुर का भी फॉलो करते हैं।
क्यों मायापुर क्यों?
अरे मंगला आरती में तोड़ने को मिल जाता है।
प्रभु जी आप महान है, आप सही में महान। लेकिन आप अभी मंदिर क्यों आ रहे हैं फिर?
नींबू पानी पीने के लिए।
क्यों प्रभु जी, आपने तो निर्जला किया ही नहीं, तो नींबू पानी पीने के लिए?
जिसने मंदिर का नींबू पानी किया नहीं टेस्ट, उसका ना निर्जला एकादशी है वेस्ट। और हम आएंगे तो हमको दो फायदा है। हमको देख के लोग सोचेंगे कि ये भी निर्जला है, और हमें देख के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। प्रभु जी एक हम्बल रिक्वेस्ट है,
बोलो ना बोलो।
किसी से कहिएगा मत कि हम निर्जल नहीं है, नहीं तो क्या कहेंगे लोग।
अरे प्रभु जी यही है सबसे बड़ा रोग, कि क्या कहेंगे लोग। अरे आप ऐसे बड़े बड़े, मैं बड़ा भक्त हूं सबको बताते रहेंगे, चैतन्य महाप्रभु आपको कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किसको लेके जाता है मालूम है बैक टू गॉडहेड?
किसको?
जो बोलता है मौसम पति तो प्रभु न पाई बया, उन्हीं को लेके जाते हैं प्रभु जी, ना कि जो बोलता है मैं निर्जला करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो आप जतन से पालन कीजिए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा, जतन पालन करिए।
प्रभु मैं मेरी लाइन से भटक गया था, आपने मुझे सही समझाया। अब मैं पारण टाइम नहीं पूछूंगा, अब मैं देखूंगा कि मैंने भगवान का जप कितना किया। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेलकम टू राधा गोपीनाथ मंदिर।
हरे कृष्णा।
हाँ हरे कृष्णा, कौन बोल रहे हैं प्रभु जी?
प्रभु जी मैं चिमन राव बोलते हैं।
हाँ बोलिए प्रभु जी, क्या है?
प्रभु जी
हाँ,
आज भागवतम कौन देना?
प्रभु जी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है।
डिक्लेयर नहीं केला मंजे काय, ही गेट टेस्ट मैच है डिक्लेयर करायला।
मतलब प्रभु जी अभी तक अनाउंस नहीं किया है कि कौन भागवतम दे रहा है।
अच्छा, पण प्रभु जी दर रविवारी प्रल्हाद प्रिय प्रभु भागवतम देतात ना?
हाँ देते है प्रभु जी, लेकिन आज अनाउंसमेंट नहीं हुआ है।
पण ते मंगल आरतीला आले होते का?
मैं दर्शन आरती में आता हूँ प्रभु जी, मेरे को कैसे पता चलेगा वो मंगल आरती में आए थे कि नहीं?
मग कोणाला तरी विचारा की?
लेकिन लॉजिक क्या है इसके पीछे?
लॉजिक है ओ लॉजिक नहीं म्हणजे प्रल्हाद प्रिय प्रभु मंगल आरतीला जर होते, जपाला जर होते, तो भागवतम देणारच की?
प्रभु जी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि वो उसके बाद रेस्ट भी ले सकते हैं ना, अगर कहीं रात को प्रचार करने को गए, थक गए हैं, उनका तबियत ठीक नहीं है, तो रेस्ट भी कर सकते हैं ना।
योड़े मोटे प्रचारक रेस्ट करता है मंजे काय?
प्रभु जी आप किधर है?
मैं बेड पे।
प्रभु जी आपने अभी तक मंजन नहीं किया और आप पूछ रहे प्रचारक रेस्ट करता है मंजे काय मंजे काय?
सॉरी हाँ प्रभु सॉरी, वो प्रल्हाद प्रिय प्रभु लेक्चर नहीं देना तो कौन देना? मनोरंजन प्रभु का गंभीर प्रभु?
प्रभु जी ऐसे नाम तो कोई डिवोटी नहीं है हमारे टेम्पल में, मनोरंजन प्रभु गंभीर प्रभु?
नहीं मंजे हसवणार की रडवणार।
प्रभु जी आप भागवतम सुनने जा रहे हैं या बाहुबली देखने जा रहे हैं?
बाहुबली नहीं हाँ प्रभु जी, प्रल्हाद प्रिय प्रभु येत नहीं है तो मी पण नहीं येणार, मी घरी बसूनच बली महाराजांची कथा वाचेल, वामन देवच माझे बाहुबली।
प्रभु जी आप अगर ऐसा करोगे कि ये डिवोटी भागवतम दूंगा तो ही मैं आऊंगा, ये डिवोटी नहीं दूंगा देंगे भागवतम तो मैं नहीं आऊंगा, तो कैसे चलेगा प्रभु जी? हर एक भक्त जो यहाँ पे व्यासासन पे बैठ के भागवतम देता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस, उसके डिवोशनल लाइफ में उसको जो अनुभव आए वो सबके साथ शेयर करता है, एंड यू विल बी एनरिच्ड बाय द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल द डिवोटीज. तो ऐसे चूजी मत बनो कि ये देंगे तो आऊंगा, ये देंगे तो नहीं आऊंगा, ऐसा ठीक नहीं है प्रभु जी.
थैंक यू. हाँ प्रभु जी, तुम्ही मला की नाही आज एक खूप छान शिकवण दिली आहे. इथून पुढे मी कधीच विचारणार नाही की कोण भागवतम देणार. कोणीही भागवतम दिलं तरी मी सिन्सिअरली अटेंड करणार. अगदी हा ऑपरेटर प्रभू, तुम्ही सुद्धा भागवतम दिलं ना तरी हा
ठीक आहे प्रभू जी, ठीक आहे,
भागवतम बसूनच ऐकणार.
मी समज गए आपकी भावना. थँक यू प्रभू जी. हरी बोल
प्रभू जी.
हरी बोल बेटा.
हरी बोल प्रभू जी.
अरे आप कब से आ रहे मंदिर?
याद नहीं है प्रभू जी.
याद नहीं मतलब?
जब से मैं एक महीने की थी ना तब से लेके आ रहे हैं मुझे मंदिर में.
अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा टेंशन मत लो, याद नहीं आए तो हम लोग भी मंदिर में बहुत कुछ सुनते हैं, कुछ याद नहीं रहता हमको. तो ऊपर भागवतम नहीं सुन रहे आप?
प्रभु जी एक क्वेश्चन था उसके लिए नीचे आ गए, आप आंसर दोगे?
मैं आंसर देने के लिए मेरे को पगार मिलता है मंदिर से, बोलो ना.
प्रभु जी मैं हर संडे मंदिर में भागवतम सुनने आती हूँ मम्मी पापा के साथ. तो हर संडे वो कृष्ण भगवान की लीला बताते हैं.
हाँ.
वो बोलते हैं कि जब कृष्ण भगवान मेरे उम्र के थे तो वो गाय चराते थे, मक्खन चुराते थे.
ए, मैं महाप्रसाद चुराने को आने वाला नहीं, मेरा नौकरी चला जाएगा इधर.
नहीं प्रभु जी, पर ऐसे एक बार भी नहीं बोला कि वो मेरे उम्र के होकर मंदिर में बैठ के प्रवचन सुनते थे.
पॉइंट है, तभी वृंदावन में मंदिर भी नहीं था ना, भगवान लाइव घूमते थे इधर उधर, तो मंदिर का जरूरत नहीं. तो बेसिकली तुमको जो कृष्ण के दोस्त है उनके जैसे भक्ति करनी है.
हाँ प्रभु जी.
और उनके जैसे मस्ती भी करनी है.
हाँ प्रभु.
तो टेम्पल हॉल में क्या कर रहे है तू उधर बेस क्लासरूम में चला जाना.
मतलब भक्ति शास्त्री?
भक्ति शास्त्री नहीं रे, भक्ति शास्त्री 12:30 बजे खत्म हो जाता है, वो बड़े लोगों के लिए. उसके बाद उधर गोपाल्स फन स्कूल चालू होता है, उधर पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट करेंगे और गेम्स खेलेंगे, सब स्पिरिचुअल गेम्स खेलेंगे. उधर कीर्तन होगा, डांस होगा, आपको अच्छा अच्छा केक वगैरह खिलाते हैं वो लोग.
हाँ प्रभु जी.
हाँ तो आप उधर चले जाओ. और आप यात्रा आ रहे ना, वृंदावन यात्रा?
मायापुर यात्रा ना.
अच्छा मायापुर है क्या? हम लोग के लिए क्या ऑपरेटर लोगों के लिए सेम रहता है वृंदावन मायापुर. तो मायापुर यात्रा आ रहे हैं ना?
हाँ प्रभु जी.
तो अभी हमको पता चला कि उधर एक बच्चे लोगों के लिए अलग पंडाल बना रहे.
हाँ प्रभु जी.
वो पंडाल का नाम है भक्ति विद मस्ती. तो मायापुर यात्रा में उधर ही सब मस्ती करने का.
हाँ प्रभु जी.
ताकि बाकी लोग प्रवचन सुन सके. अरे हरे कृष्णा, वेलकम टू राधा गोपीनाथ मंदिर.
हरि बोल. कौन बोल रहे? विश्वक्षण बोल रहे?
अरे नहीं प्रभु जी.
तो कौन हुआ, संदीप प्रभु बोल रहे?
नहीं प्रभु जी.
आवाज तो बालकृष्ण प्रभु के जैसा ही लग रहा
है. अरे नहीं, क्या है बोलो ना प्रभु जी, क्या है?
मतलब आप कौन बोल रहे?
मेरा नाम युगावतर दास है.
अच्छा मतलब नया है?
नया नहीं प्रभु जी, 20-25 साल हो गए मंदिर में.
20-25 साल हो गए फिर भी नया है?
आप कब से आ रहे हैं मंदिर?
मैं भी 20-25 दिन से आ रहा हूँ मंदिर में.
अच्छा चैंटिंग चालू किया क्या?
चैंटिंग करना ही चाहिए ना, सबको चैंटिंग करना चाहिए. मैं भी करेगा.
कर रहे कि नहीं बताओ ना.
अरे कार्तिक मंथ चालू होएगा तो एक माला करेगा.
कार्तिक में क्यों करेगा?
एक माला का बेनिफिट मिलता है 1000 माला के बराबर ना.
अच्छा बेनिफिट के लिए चैंटिंग करने का है.
आ, तो और नहीं तो क्या.
अच्छा अच्छा बोलो, फोन किसके लिए किया था?
अरे हाँ वो तो भूल गया मैं. प्रभु जी आपने ब्रेकफास्ट लिया क्या?
ब्रेकफास्ट लिया ना.
ब्रेकफास्ट में क्या था प्रभु जी?
प्रसाद था.
अरे कैसा बात करते हैं प्रभु जी, मंदिर में ब्रेकफास्ट में प्रसाद ही होएगा ना, प्रसाद में क्या था?
प्रसाद के अंदर उपमा था प्रभु जी.
अच्छा प्रसाद के अंदर उपमा था, लेकिन उपमा के साथ में क्या था, सांबर था कि रसम था?
रोजी मैं मराठी आदमी है, मेरे को उपमा रसम सांबर समझता नहीं डिफरेंस।
अरे क्या आप ही?
जो भी है खा लेते हैं हम लोग, सादा रहते ना मराठी आदमी, सादा रहते है।
अच्छा प्रभु जी, बाय द वे आप प्रसाद का प्लेट बनाने के लिए किचन में गए होंगे ना?
हाँ गया था ना।
आपने किचन में देखा क्या, कुछ संडे फिश का सब्जी कटिंग हो रहा था क्या?
नहीं प्रभु जी, गया था लेकिन कटिंग कर रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे मेरे को देखा नहीं प्रभु जी।
मतलब कौन सा सब्जी कट कर रहा है वो भी मालूम नहीं आपको?
नहीं नहीं नहीं
भाई। एनी चांस आपने वो पनीर कटिंग होते हुए देखा था प्रभु?
नहीं मैं पूछा, लेकिन बोले आज संडे को कॉस्ट कटिंग हो रहा है इसके लिए ये संडे को पनीर नहीं है, ऐसा बोला मुझे।
ओ, मतलब कि पाइनएप्पल कटिंग भी नहीं हो रहा होगा ना?
पाइनएप्पल कटिंग हो रहा था, क्या हो रहा है?
अरे वाह वेरी गुड, तो मैं संडे फिश को आएगा
क्या? आप डाइट पे है क्या, पाइनएप्पल खा रहे
हैं? अरे नहीं प्रभु जी, मंदिर के अंदर पाइनएप्पल हलवा एक नंबर बनता है।
अच्छा अच्छा, अच्छा।
अपना फेवरेट है प्रभु, वो पाइनएप्पल हलवा पहली बार टेस्ट किया तब से ही मंदिर आने का चालू किया है मैंने।
प्रभु जी एक बात बताओ।
हाँ प्रभु जी।
देवालय आ रहे हैं, भोजनालय आ रहे हैं, मतलब अगर खाने में आपको इंटरेस्ट है मैं गोविंदाज में कनेक्ट करता हूँ ना।
ये नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं, वो गोविंदा वाले तो पैसा मांगते हैं, और वैसे भी हमने डोनेशन दिया है ना, इस साल ही चालू किया जन्माष्टमी डोनेशन में, इतना सारा पैसा दिया है, अभी इतना तो हक बनता है ना प्रभु जी।
अच्छा तो डोनेशन आप आपके पाइनएप्पल हलवा के लिए देते हैं क्या?
और नहीं देते।
अरे प्रभु जी ऐसा नहीं चलने का, जो भी हम डोनेशन देते हैं हर चीज बेनिफिट के लिए नहीं करने का, चैंटिंग बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, डोनेशन बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये हमारा चैंटिंग, हमारा डोनेशन, ये सब कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के प्लेजर के लिए करने का प्रभु जी, कृष्ण खा सके उसके लिए करना है हमको ये सब कुछ
प्रभु जी। प्रभु जी आपने सच्ची में मेरे को बराबर करेक्ट किया प्रभु जी, आज के बाद पाइनएप्पल हलवा नहीं खाएगा।
अरे रो रो रो, पाइनएप्पल हलवा छोड़ने का नहीं, वो मेरा बात इतना सीरियसली मत लो तू। और पाइनएप्पल हलवा की वजह से मैं 25 साल से बैठा हूं इधर।
मतलब मैं पहला आदमी नहीं है जो पाइनएप्पल हलवा से अट्रैक्ट हुआ है?
इधर जो सब लोग बैठे वो पाइनएप्पल हलवा की वजह से बैठे
हैं। क्या बात करते हैं प्रभु जी, क्या बात करते हैं।
और दूसरा मैं बताता हूँ, पाइनएप्पल हलवा बंद हो जाएगा ना, टेम्पल खाली हो जाएगा, भक्त के और डेटीज भी छोड़ के चले जाएंगे मंदिर, ऐसा पाइनएप्पल हलवा बनता है हमारे मंदिर।
मतलब मैं भी पाइनएप्पल हलवा खाएगा तो इनके जैसा सिंसियर डिवोटी बन जाएगा?
हाँ तो अरे प्रभुपाद जी ने बोला है पाइनएप्पल हलवा खाते खाते जाने का अपने को गोलोक वृंदावन।
क्या बात,
ओके तो अब... पाइनएप्पल हलवा छोड़ने का नहीं। हाँ
हाँ, मतलब अभी से मैं भागवतम को भी आएगा, संडे फिश को भी आएगा, और कीर्तन मेला में भी आएगा।
थैंक यू प्रभु जी, हरी
बोल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
वेलकम टू राधा गोपीनाथ मंदिर।
प्रभु जी सर्वर डाउन है क्या?
सर्व के सर्वेंट डाउन है, मैं बैठा हूँ ना इधर, बोलिए ना क्या है।
अरे प्रभु जी सर्वेंट नहीं, एस्कॉन डिजायर ट्री का सर्वर।
इस्कॉन डिजायर ट्री का? अरे प्रभु जी क्या पीछे पड़ गए आप लोग, एक दिन सर्वर डाउन हो जाता है तो 200, आपको मैं बताना चाहता हूँ यू आर द 200th कॉलर, ये सर्वर डाउन हो गया। अरे एक दिन हो सकता है ना प्रभु जी, ये सेवा कर रहा है ये वेबसाइट, इतना आपको सब जगह दुनिया भर में कहीं पे भी आप जाओ आप लेक्चर सुन सकते हो इस्कॉन डिजायट्री के वेबसाइट से। एक दिन कभी सर्वर डाउन हो गया तो 200 फोन कॉल
प्रभु जी पर
नहीं, बट आप फिर आ जाओ ना मंदिर, घर से बाहर निकलो मंदिर आ जाओ, इतना क्या, एक दिन तो एडजस्टमेंट करो ना यार
प्रभु जी,
थोड़ा तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, आप जरा समझो ना, आ जाओ फटाक से।
प्रभु जी आप मुझे गलत समझ रहे हो, क्या अगर मैं मुंबई में रहता तो मैं जरूर आता प्रभु जी मंदिर में।
अच्छा बॉम्बे में नहीं, आप रहते थे ना बॉम्बे में, सुना ही लगता है मैंने आवाज आपका।
हाँ प्रभु जी मैं रहता था पर अभी गांव में हूँ प्रभु जी।
अच्छा क्या हो गया प्रभु जी?
प्रभु जी लगता है आप मुझे बहुत गलत समझ रहे हो, 2 साल पहले मेरे फादर को पैरालिसिस का अटैक आ गया था, और मेरी माँ उनकी सेवा करते करते वो भी बीमार पड़ गई, उन दोनों की सेवा करने के लिए मैं गाँव जाके सेटल हो गया। मुझे प्रभु जी संतुष्टि है कि मैं मेरे माता और पिता की सेवा कर रहा हूं, पर प्रभु जी एक बात का बहुत बड़ा दुख है प्रभु जी, उधर कोसों दूर तक एक भी ड्यूटी नहीं है प्रभु जी, एक भी ड्यूटी नहीं है। जब मैं मुंबई रहता था, मंदिर के पास रहता था, मैंने प्रभु जी एक भी ड्यूटी की कदर नहीं की, एक भी ड्यूटी की कदर नहीं की, सब ड्यूटीज में गलतियां ढूंढता रहा, इसमें ये गलती है तो उसमें वो गलती है। प्रभु जी आज जाके ड्यूटीज के संग का मुझे एहसास हो रहा है और मुझे उसका महत्व समझ रहा है। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ये दासे करुणा करो। प्रभु जी मेरी जो भी भक्ति बची हुई है, जो भी भक्ति चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एस्कॉन डिजायर ट्री की वजह से चल रही है। वो प्रभु जी वेबसाइट नहीं है, वो प्रभु जी हमारी लाइफलाइन है, हमारी जिंदगी है। प्रभु जी हमारी जिंदगी है।
प्रभु जी सॉरी मैं पहले जरा बोल दिया, क्या क्या बेनिफिट मिलता है आपको उधर गांव में रह के वो वेबसाइट से?
प्रभु जी क्या नहीं है इस्कॉन डिजायर्ट्री पे, क्या नहीं है वो पूछिए। मेरे बच्चे उधर डिवोशनल पेंटिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, क्विजेस खेलते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते ही रहते। और मेरी वाइफ उधर डीटी ड्रेसिंग सीखती है, प्रसादम की डिफरेंट रेसिपीज सीखती है, ई काउंसलिंग करती है, क्या नहीं है प्रभु जी, क्या नहीं है। और ये वेबसाइट हमारे घर में सुबह से रात तक मंगल आरती से शयन आरती तक चलता रहता है। और जब से मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा भागवतम सुन लेता हूँ, थोड़ा भजन सुन लेता हूँ, थोड़ा कीर्तन सुन लेता हूँ, और वो सुनते सुनते मैं भी थोड़ा दो बातें बोलना सीख गया हूँ। और इधर प्रभु जी आज 10 डीओटी पूरा 16 माला करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ पूरा क्रेडिट एस्कॉन डिजायर ट्री को जाता है। प्रभु जी सिर्फ एस्कॉन डिजायर ट्री को जाता है।
अरे प्रभु जी केवल एक वेबसाइट का आश्रय लेके आपने गांव में सेंटर चालू कर दिया। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि अभी ये इस्कॉन डिजायर ट्री का टीम है ना, वो हरे कृष्णा टेलीविजन लॉन्च कर रहे हैं, और 24 घंटा आप कृष्ण कथा हरि कीर्तन सुन सकते हैं उसके ऊपर।
क्या बड़ा न्यूज दिया प्रभु जी, मैं वही सोच रहा था कैसे इन सब ड्यूटीज को, सब भक्तों को, सब विलेजर्स को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो आज जाके मेरे घर में ही कंप्यूटर है और नेट कनेक्शन है, पर सबके पास टीवी है। आज जैसे आपने ये न्यूज दिया है, मैं पूरा चैनल नंबर शेयर कर दूंगा और सब जन डिवोशनल एक्टिविटीज को कनेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। वेलकम टू राधा गोपीनाथ मंदिर।
अरे हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल,
हरि बोल प्रभु जी। प्रभु जी बोलिए।
अरे प्रभु जी आप ही बोलो ना, इतना अच्छा आपका आवाज है, आप ही बोलो।
प्रभु जी बोलो ना, क्या है?
प्रभु जी क्या बोलूं, इतना कुछ बोलना है, यहाँ से तो मेरे साथ कोई बात ही नहीं करता है।
प्रभु जी आप ऐसा करो, आप पहले सोचो क्या बोलना है, फिर बाद में फोन करो।
ए रुको 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 रुको,
क्या हो गया
प्रभु जी?
हाँ
एक अपॉइंटमेंट दे दो ना प्रभु जी, एक अपॉइंटमेंट बस।
किसके साथ अपॉइंटमेंट चाहिए, कौन से प्रभु जी के साथ?
किसके साथ?
हाँ
इस मंदिर के,
हाँ
सबसे महान,
हाँ
सेल्फ रियलाइज्ड,
हाँ
प्योर डिवोटी,
हाँ
शिक्षा गुरु,
हाँ
उनके साथ अपॉइंटमेंट चाहिए।
प्रभु जी इधर सबको अपना शिक्षा गुरु सबसे महान प्योर लगते हैं, आप नाम बताएंगे तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ।
क्या आपको इस मंदिर के सबसे महान शिक्षा गुरु का नाम मालूम नहीं है?
नहीं प्रभु जी।
आपको मेरा नाम मालूम है?
नहीं प्रभु जी।
अरे यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रभु, मेरा नाम कोई जानता नहीं है।
प्रभु जी आप
उससे बात कोई नहीं करता।
प्रभु जी आपका नाम बताओ क्या है, मुझे बोलो।
प्रभु जी मेरा नाम भावनिक प्रभु है, भावनिक, भावनिक।
मैं समझ गया, वो नाम से समझ गया मैं क्या प्रॉब्लम। आपको किससे बात करने का, आप नाम बोलो
प्रभु जी।
हाँ
वो सबसे बड़े महान शिक्षा गुरु का नाम है, हिज ग्रेस श्रीमान कृष्ण गोपाल दास।
अच्छा आपको कृष्ण गोपाल प्रभु से बात करना है?
कृष्ण गोपाल प्रभु से नहीं,
नहीं करना है।
हिज ग्रेस श्रीमान कृष्ण गोपाल प्रभु से बात कर रही हूँ।
प्रभु जी मेरे को हेवी हो रहा है बहुत। हिज ग्रेस श्रीमान कृष्ण गोपाल प्रभु से आपको क्या बात करना है?
प्रभु जी वो बहुत लंबा स्टोरी है।
बोलो बोलो। चलो
वो क्या है ना प्रभु जी, उस दिन मंदिर में आया था, प्रभु जी चैंटिंग कर रहे थे। हाँ। तो मुझे लगा उनके साथ चैंटिंग करूं। हाँ। तो ऐसे इधर तुलसी महारानी। हाँ। ऐसे इधर कृष्ण गोपाल प्रभु। हाँ। यानी हिज ग्रेस श्रीमान कृष्ण गोपाल प्रभु। हाँ। और ऐसा मैं बीच में बैठ गया। हाँ। और पूरा पूरा हरि बोल, एक हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे पूरा माला कर रहा था, लेकिन मेरे माला के बीच में प्रभु श्रृंगार दर्शन शुरू हो गया। प्रभु जी मेरा एक माला रह गया,
श्रृंगार दर्शन के बीच में आ गए आपके। अच्छा। हाँ।
फिर ना क्या हुआ,
गोपीनाथ के बीच में आ गए आपके चैंटिंग। हाँ।
अच्छा। प्रभु जी 15 माला ही हुआ कंप्लीट। हाँ। फिर क्या हुआ ना, मुझे लगा कि अभी प्रभु जी से बात करता हूँ तो प्रभु जी गायब। तो फिर मैं ऐसे जैसे संडे फिस्ट खत्म होते नीचे जा रहा था। हाँ। ऐसे प्रभु जी ऊपर चढ़ते आ रहे थे। हाँ। मैंने उनके पास देखा और इतना बड़ा स्माइल दिया प्रभु जी।
हाँ।
उन्होंने स्माइल ही नहीं दिया प्रभु जी, ऐसे ही निकल गए।
क्यों आपको क्यों स्माइल नहीं किया?
शायद नाराज हो गया प्रभु जी।
क्यों नाराज है?
वो मेरा माला कंप्लीट नहीं हुआ ना सुबह।
भावनिक प्रभु। हाँ। ये नाम आपको पहले से दिया है या इस्कॉन में आने के बाद मिला?
प्रभु जी अभी आप
नहीं नहीं मैं ठीक है, मैं जस्ट पूछ रहा था मेरे इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं क्या बोलता हूँ, वो फिर माला आपने किया था ना?
हाँ माला कंप्लीट हो गया।
16 माला किया ना उसने?
हाँ हाँ।
ठीक है मैं उनको बता देता हूँ कि आपका 16 माला हो।
अरे प्रभु जी नहीं उतना ही नहीं, और भी बात करना है।
और भी है बोलो।
हाँ प्रभु जी क्या है ना, मुझे पर्सनल इंस्ट्रक्शन चाहिए। पर्सनल इंस्ट्रक्शन?
पर्सनल इंस्ट्रक्शन मतलब?
मतलब वैसा ही पर्सनल इंस्ट्रक्शन जैसा चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दिया था 7 दिन के लिए, और वैसा ही पर्सनल इंस्ट्रक्शन जैसा शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया था 7 दिन।
प्रभु जी इधर 7 दिन का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, इधर लोगों को चैंटिंग वगैरह करने का रहता है रोज का। 16 माला करते करते हमारा दिन निकल जाता है इधर। 7 दिन क्या बात करेंगे
प्रभु जी, मुझे केवल 7 मिनट चाहिए प्रभु। 7 मिनट?
7 मिनट? 7 मिनट का आपको अपॉइंटमेंट चाहिए उनके साथ?
हाँ पर्सनल, पर्सनल इंस्ट्रक्शन।
प्रभु जी मैं आपको एक पर्सनल इंस्ट्रक्शन दूं क्या जरा?
दो ना प्रभु जी।
उनका इतना लेक्चर्स है कृष्ण गोपाल प्रभु का, कितना लेक्चर सुना है आपने अभी तक? लेक्चर सुनते हैं क्या? आपने उनका लेक्चर सुना है क्या?
हाँ प्रभु जी 2-3 लेक्चर सुना है।
प्रभु जी उन्होंने 15 साल में 1500 लेक्चर दिया अभी तक।
1500?
कितना सुना है आपने?
बोला 2-3 सुना है प्रभु जी।
अरे प्रभु जी मैं क्या बोलता हूँ, पहले लेक्चर सुनो ना उनका। आप इतना उनसे अटैच्ड हो कि उन्होंने स्माइल नहीं दिया तो आप नाराज हो जाते हो, तब से आप डिस्टर्ब्ड हो 7 दिन से। तो मैं क्या बोलता हूँ आप उनका लेक्चर पहले सुनो। उनके हर एक लेक्चर में वो 1000 पर्सनल इंस्ट्रक्शन देते।
बाप रे।
हाँ तो वही सुनते सुनते आपका पूरा लाइफ बीत जाएगा। अच्छा। और वो सब 1500 लेक्चर सुनने के बाद आप ये पर्सनल इंस्ट्रक्शन ये वो, तो इतना इंस्ट्रक्शंस मिलता है उसमें से प्रोजेक्ट। और अगर उनके पास टाइम नहीं है, वो बिजी है। हाँ। तो उनके कुछ शिक्षा डिसाइपल्स रहेंगे ना पास।
हाँ।
क्लोज एसोसिएट्स। हाँ। उनके साथ एसोसिएट करो
चलता है
उनके साथ। हाँ ऐसा कर, उनके साथ दोस्ती करो।
शिक्षा गुरु से बात करना?
नहीं 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 डायरेक्ट नहीं हुआ तो फिर इनडायरेक्टली आप बाकी लोगों से दोस्ती करो, उनसे यू नो गाइडेंस ले लो।
अच्छा,
और इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं हमारे मंदिर में, इतने वंडरफुल डिवोटीज हैं, सबसे आप थोड़ा थोड़ा गाइडेंस लेके आप ऐसे किसी एक ही इससे अटैच होंगे तो कैसा चलेगा प्रभु जी?
अब प्रभु जी।
हाँ
कितना अच्छा, मुझे आपने 4 मिनट दिया प्रभु जी।
आप गिन रहे थे? कितने गिन रहे थे?
मुझे पहली बार लाइफ में पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिला प्रभु।
हाँ।
एक सवाल पूछू क्या?
बोलो बोलो।
आप भी काउंसलर है क्या?
नहीं रे मैं बोला ना।
नहीं वो क्या है ना कि कृष्ण गोपाल प्रभु का टाइम मिलता नहीं ना, तो आपसे ही थोड़ा।
नहीं नहीं प्रभु जी मैं ऑपरेटर ऑपरेटर का जॉब करता हूँ प्रभु जी इधर।
तो ठीक है प्रभु जी
आप वो लेक्चर सुनो, लेक्चर में कुछ डाउट है तो
1500 लेक्चर है ना?
1500? हाँ
वो पूरा 1000 इंस्ट्रक्शन है।
हाँ 1000 हर लेक्चर में 1000।
ठीक है प्रभु जी।
हरि बोल। वेलकम टू राधा गोपीनाथ मंदिर।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरि बोल। कौन बोल रहे?
अरे राग रागेश्वर दास आपका आपका अरे क्या प्रभु, आप मेरा नाम नहीं जानते राग रागेश्वर दास? अरे मेरा धुन सुन के सब लोग को मालूम है राग रागेश्वर ही होगा।
नहीं प्रभु जी, मतलब कुछ नहीं, नाम सुना।
अरे प्रभु, आपने वो डायलॉग नहीं सुना है?
कौन सा?
अरे जिधर हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
डायलॉग सुना है प्रभु
जी? तो वैसे प्रभु जी, हम जिधर बैठ जाते हैं ना, कीर्तन वहीं से शुरू होता है।
क्या बात है प्रभु जी, लेकिन मैंने आपका कीर्तन कभी सुना नहीं प्रभु जी।
अरे प्रभु, व्हाट अ मिसफॉर्च्यून। अरे प्रभु, आज सुबह मैं उठा ना, अभी आपको एक धुन सुना तो एकदम ओरिजिनल प्रभु जी। नींद से उठा ना तो एक धुन दिमाग में आ गया प्रभु जी। और पूरा इस्कॉन में ये ट्यून किसको मालूम नहीं है प्रभु जी? आपको सुना तो अभी प्रभु
बोलो।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे।
देखो प्रभु जी, कैची है कि नहीं ट्यून? ट्यून एकदम कैची है। देखो आप भी गाने लग गए
प्रभु जी। आपने तो कोरे कागज पे कृष्ण का ही नाम लिख दिया।
अरे प्रभु यार,
अरे आपका आराधना महान है प्रभु जी। सब याद आ गए मेरे को, 25 साल से जो भूल गया था सब याद दिला था।
अरे प्रभु जी, थोड़ा ट्यून में 19-20 तो होता है ना यार, है ना? नकल में भी अक्ल चाहिए प्रभु। चलो छोड़ो यार, ये चक्कर में मैं फोन किया वो भूल गया भाई।
हाँ।
अच्छा देखो, शाम को कीर्तन होने वाला है संडे को।
हाँ।
मेरा नाम है कि नहीं प्राइम स्लॉट में?
प्राइम स्लॉट में राग राग नहीं प्रभु जी, आपका नाम नहीं है प्राइम स्लॉट में।
मेरा नाम नहीं है?
हाँ।
तो किसका नाम डाल दिया लोग ने
प्रभु जी? बलदेव भक्त दास, रावल तीर्थ दास, सत्स्वरूप दास, ये 3 नाम है प्राइम स्लॉट में।
अरे प्रभु, ये लोग सब असुर लोग है प्रभु।
असुर
मतलब इनके पास सुर नहीं है प्रभु जी।
प्रभु जी ऐसा बोलो ना आप, असुर सुर, इधर मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा ये असुर सुनकर। तो आपका नाम ढूंढता हूँ, एक मिनट।
देखो देखो यार, मेरा नाम तो होना ही चाहिए।
नाम क्या बोला आपने?
रे राग रागेश्वर दास।
प्रभु जी आपका नाम है आपका? हाँ। दोपहर को 2 से 3 के बीच में।
अरे प्रभु, दोपहर को कौन आएगा? कम से कम 400-500 लोग रहेंगे तो मेरा धुन जमेगा प्रभु जी। कौन रहेगा प्रभु जी?
400-500 लोग तो नहीं रहेंगे प्रभु जी।
तो फिर कितने रहेंगे प्रभु जी?
जी मैं आपको गारंटी अगर चाहिए तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 11 लोग रहेंगे।
11 लोग?
11 जन रहेंगे। 11 जन?
ये 11 जन कौन है प्रभु जी?
है ना प्रभु जी, हमारे ऑल्टर पे 10 डेटीज है और सामने शिल प्रभुपाद है। ये 11 जन ये टेम्पल हॉल छोड़ के कहीं नहीं जाते।
अरे प्रभु, क्यों मजाक कर रहे हो यार? एक तो मेरा ट्यून इधर बिगड़ गया, सब ऊपर से आप बोलते 11 जने। अरे ये लोग थोड़ी ना गाते हैं, ये लोग सिर्फ सुनते हैं प्रभु जी।
अरे प्रभु जी, आपको मैं वही बताना चाहता हूँ कि यही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको दिखाना है आप कितना सुंदर गाते है। 400-500 भक्तों ने बोलना चाहिए, अरे राग रागेश्वर क्या गाते, राग रागेश्वर क्या गाते। अरे प्रभु जी, हमको गाना चाहिए ये सब कुछ जो चल रहा है ना, हमारा फेस्टिवल, हमारी कथा, हमारा कीर्तन, हमारा जप, ये सब ये 11 जन के लिए चल रहा है। ये 11 जन के खुशी के लिए, उनको प्लेजर देने के लिए हमारे सारे एक्टिविटीज ये मंदिर में चल रहे हैं। शिल प्रभुपाद जी ने क्या किया प्रभु जी? उन्होंने केवल अपने गुरु और कृष्ण ये दोनों के प्लेजर के लिए एक झाड़ के नीचे खड़े रह के एक सिंपल ट्यून बोला प्रभु जी, और पूरे दुनिया को भक्त बना दिया। आपको मालूम है वो ट्यून?
ट्यून तो मालूम है, लेकिन क्या पॉइंट बोला आपने प्रभु जी? अरे प्रभु भी आप सही में ऑपरेटर हैं, सही में
ऑपरेटर ही हूं मैं।
अरे मतलब आपने पूरा फॉल्स ईगो का ऑपरेशन कर दिया इधर। अरे आप गलत जगह बैठे प्रभु जी, आपको तो व्यास आसन पे होना चाहिए।
प्रभु जी इधर ठीक है, इधर पगार मिलता है मेरे को।
अने प्रभु जी आपको बोलता हूँ आज से ये फिल्मी धुन बंद। और वो क्या बोले आप, प्रभुपाद जी ने पेड़ के नीचे रह के सिंपल ट्यून गाया, पूरा दुनिया को भक्त बना दिया
कृष्ण और गुरु के प्लेजर के लिए।
यस यस, वो धुन याद आ रहा है प्रभु जी मेरे को।
हाँ बहुत, आप बाकी धुन में इतने चले गए कि वो धुन भूल गए ना आप।
हाँ वो याद, अरे आ गया प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
बस राग रागेश्वर प्रभु, और सब लोग शिल प्रभुपाद की किताबें पढ़ते रहो, और शिल प्रभुपाद ने जो हमको ये महामंत्र दिया है ना वो गाते रहो और बजाते रहो जोर से।
हरे कृष्ण। आने वाले बलराम जयंती